نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے جنت کی کنجیاں کے نام پر. کتاب کا نام ہے جنت کی کنجیاں. کنجی کہتے ہیں چابی کو, کیز آف دی جنہ. اور جنت واجب کرنے والے اعمال, اصل میں یہ ان حدیثوں کا مجموعہ ہے جس میں کسی نہ کسی ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی خوشخبری دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم حدیث کی کتاب پڑھنے لگے ہیں, لیکن ساری حدیثوں کا ٹاپک جو ہے وہ جنت ہے. اور میں آپ کو کس سوچ کے ساتھ پڑھا رہی ہوں, یادگار کے لیے یہاں یہ انٹرو میں بات کر دوں کہ اس وقت اللہ کے حکم سے ہم یہ کتاب حرم کی حد میں شروع کر رہے ہیں. ہم اپنے عمرے کے ٹرپ پہ ہیں مارچ 2015. تو اس میں ہم اس کو ایز اے چیک لسٹ پڑھیں گے, چھوٹے چھوٹے سلاٹس کی صورت میں کریں گے. ہم یہاں تقریباً 14 دن ہیں اگر, تو ان دنوں میں ہم اس پوری کتاب میں وہ حدیثیں جس میں کچھ اعمال کی رغبت دی گئی ہے, کچھ کرنے کا شوق ہے, کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے, تو ہم اس کو اس سوچ کے ساتھ یہاں پوری کر کے جائیں گے کہ جب واپس جائیں تو یہ ساری عادات ہمارے اندر آ چکی ہوں. ٹھیک ہے, اور حقیقت ہے کہ ہم سب جنت کی خواہش رکھتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو لینا بھی ہے. تو آئیے بغیر کسی ڈیلے کے اس کو ہم شروع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دنیا جس نے فنا ہو جانا ہے, اس میں رہتے ہوئے ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے جو ابدی اور باقی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. تو آج آپ دیکھیے کہ ہماری دنیا کتنی بھی خوبصورت ہو جائے, لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی ہو اور خدا نہ خواستہ ہم جنت سے محروم رہ گئے تو ہمارا وہاں کیا انجام ہوگا. یہاں تو کہتے ہیں نا کہ مر کے تو موت آ گئی تو چین پائیں گے, مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. تو یہ سوچ کے ساتھ ہم نے اس سیریز کو لینا ہے کہ یہ میرے لیے ایک اور موقع ہے اپنی اصلاح کا. بیسیکلی یہ تزکیہ ہے, ہمارا اپنا محاسبہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. باتیں بہت ساری ہمیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن ایک سٹریچ میں جب ہم یہ باتیں پڑھتے سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. جن ساتھیوں کے ہاتھ میں بک ہے وہ بک کا پیج نمبر پیج نمبر 9 کھول لیجئے. میں بک سامنے رکھ کے کھول کے پڑھوں گی, اور جہاں حدیث ہوگی وہ ساتھ آپ لوگ میرے دہرائیں گے. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. چلیے, جنت واجب کرنے والے اعمال ہیں. اس میں پہلی حدیث کیا ہے؟ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. اس کے بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا عربی کے الفاظ, اس سوچ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دہرائیں گے تو اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے اور اس کو پھر یاد بھی کرے اور اس پر عمل کرے. تو حدیث میں جو آپ کے فرمائے ہوئے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ پڑھیے گا, مَن یَسْمَن لی مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بین رجلیہ اتمن لہ الجنہ. حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. من جو کوئی, یتمن ضمانت دے مجھ کو, لی مجھ کو, یعنی جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے, ماں جو بینا درمیان ہے, لحیہ اس کے دونوں جبڑوں کے. یہ جو لحی ہے نا, یہ جبڑے, اسی سے پھر داڑھی کو بھی لحی کہتے ہیں عربی میں, کیونکہ جبڑوں کے اوپر ہوتی ہے. مراد زبان ہے یہاں, دیکھ لیجئے. وما بینا, اور وہ جو درمیان ہے, رجلئی ہی, اس کی دونوں ٹانگوں کے, مراد شرمگاہ ہے, پرائیویٹ پارٹ. ازمن, تو میں ضمانت دوں گا, لہو اس کو, الجنت جنت کی. ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان, اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو 6474 نمبر کی حدیث ہے, کتاب الرقاق ہے, اور باب حفظ اللسان ہے. اور یہاں یہ بھی بات بتا دوں کہ اس بک میں جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ ناصر الدین البانی صاحب کی تخریج سے صحیح حدیثیں ہیں, یعنی اس میں ضعیف درجے کی روایت نہیں. اب آپ پہلی بات ہے کہ اس حدیث میں دیکھیے گا اللہ کے نبی جو اتنے کیئر فل تھے بات کرنے میں, اپنی مرضی سے لوگوں کو بہت جلدی خوشخبریاں نہیں سناتے تھے, एक दफा आपके पास एक शख्स आया और उसने आके ये कह दिया कि अल्लाह के नबी वो होगा जो आप चाहेंगे और अल्लाह का रसूल अल्लाह चाहेगा, तो आपने उसको रोक दिया कि क्या तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते हो, बल्कि बल माशा अल्लाह वहदा जो अल्लाह के अल्लाह चाहे। वो नबी लोगों को कह रहे हैं कि मैं जमानत देता हूं। उर्दू में भी हम जानते हैं ना जमानत का लफ्ज क्या होता है, कि भाई अगर कोई दूसरा फिर ये काम ना करे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, जमानत कह लीजिए, उसकी श्योरिटी देना, इंश्योरेंस लेना। अल्लाह के नबी जन्नत में जाने की जमानत दे रहे हैं। शर्त क्या है? नंबर एक, जुबान की हिफाजत कर लो। अब आप, मैं और आप सोचें, हमें अपनी जुबान की का कितना ख्याल रखने की जरूरत है। और दूसरा प्राइवेट पार्ट। आप देखिए, ये दो ही चीजें फिसलती हैं ना तो इंसान से गुनाह होते हैं। अमूमन औरतें जुबान से फिसल जाती हैं और मर्द शर्मगाह से फिसल जाते हैं। तो इन दोनों को हमें बहुत ज्यादा केयर में रखना है। थोड़ा सा इसका इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुबान और शर्मगाह की हिफाजत करने से जन्नत में दाखिला यकीनी हो जाता है। जुबान और शर्मगाह की हिफाजत का मतलब यह है कि इन्हें सिर्फ इसी तरह इस्तेमाल किया जाए जिस तरह शरीयत ने हुक्म दिया। इसको नोट कीजिए, हिफाजत क्या है? जैसे आप देखें ना, किसी भी चीज की हिफाजत कैसे करते हैं। आप इस होटल में हैं तो आप इनकी चीजों की हिफाजत कैसे करते हैं कि जैसे वो कहते हैं वैसे यूज करते हैं। तो जुबान की हिफाजत क्या है? कि जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जुबान से वही काम करवाए जाए। और इसी तरह शर्मगाह के साथ भी यही है, दोनों को उसी तरह इस्तेमाल किया जाए जैसे अल्लाह का हुक्म है। जुबान को झूठ, गीबत, अब आप और मैं इनको अपने लिए पॉइंट्स बना लेते हैं कि मैंने किस किस चीज से अपनी जुबान को बचाना है। तो नंबर एक, झूठ से बचाना है। चलिए इस उम्रे के सफर में नियत करते हैं शऊर के साथ, पहले भी बहुत दफा की होगी, आप शऊर के साथ करते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह झूठ तो हम नहीं अब बोलते, पहले भी बोलते नहीं थे लेकिन अब तो काफी नहीं बोलते, तो आप थोड़ा सा और देख लेते। बच्चों के साथ झूठ है, ऐसे ही राह चाहते हुए किसी से डर के झूठ बोल देते हैं, इज्जत की वजह से झूठ बोल देते हैं, बेइज्जती का खौफ होता है तो झूठ बोल देते हैं, तो मैंने अब झूठ नहीं बोलने, करते हैं ये नियत इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। फिर दूसरी चीज देखिए, गीबत नहीं करनी। आसान है मुश्किल? ये उम्रा तो बड़ा ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। हाँ, लोग कहते हैं गुनाह बख्शवाने के लिए उम्रा कर लो, हम कह रहे हैं उम्रा करो और उसके बाद गुनाह छोड़ो। है तो मुश्किल सफर है, लेकिन गीबत नहीं करनी। और गीबत क्या होती है? जो बहन गायब है उसका जिक्र ऐसे करना कि उसके सामने किया तो उसको बुरा लगा। ठीक है, गीबत गाबा गैब से है। अब बाज लोग हज और उमरे पे भी आए होते हैं और गिबते कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, हम बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। कल एक बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे कान में किसी ने डलवाया, बैठी हुई थी तवाफ के बाद नमाज के इंतजार में, ऊपर ही थी, तो फैमिलियों को लोग लेके आए होते हैं ना, तो बच्चे थक गए होंगे, मीडियम एज के बच्चे थे, तो बाप था तो वो जहां मैं बैठी थी ना तो उधर ही वो अपने छोटे बच्चों को बिठाता, कहता है तुम बैठ के तो गपशप करो तो मैं आता हूँ। यानी वो तवाफ करने जा रहा था तो बच्चों को उसके मुंह से जो लफ्ज निकला, गपशप। तो मुझे लगा कि हमारे कल्चर में ये चीज आम है ना, बातें करना, लेकिन बाज दफा आप देखिए कि इसमें गीबत हो जाती है, बात ही नहीं करनी, जुबान को सी लें। आगे आए कि हदीस एक और कि जिसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप और मैं इस पे कैसे काम कर सकते हैं? इस तरह कीजिए कि जिस चीज में मेरा कोई अमल दखल नहीं, मुझे उसका जिक्र ही नहीं करना, दैट्स इट। यही एक रास्ता मैंने देखा है बचने का, जानते बूझते ना बोले, जब तक कि आपको यकीन, और अगर कोई बात किसी के सामने पीछे की है तो उसके सामने भी कर दें कि भाई देखो मैंने ये बात की है तो मुझे तुम इस पर ना पकड़ना। फिर तीसरी चीज देखिए, बोहतान। बोहतान और गीबत में क्या फर्क है? गीबत है चस्का, जुबान का, बातें, गपशप। बोहतान क्या है? किसी के ऊपर इल्जाम लगाना कि तुमने ये किया, और छोटे छोटे बोहतान लग जाते हैं घरों में, तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, हाँ तुम्हारी यही नीयत थी, तुमने खाना नहीं पकाया। और घरेलू जिंदगी में ज्यादा बोहतान लगते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े बोहतान तो लोग कम ही लगाते होंगे ना। फिर इसी तरह देखिए, चुगलखोरी। अब ये चुगलखोरी क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि हम इसमें जो भी बात पढ़ रहे हैं वो जुबान की हिफाजत के, एक दफा जरा दोहराइए मेरे साथ इस पूरी हदीस को, दोबारा इस हदीस को दोहराते हैं और फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा हम इसमें से अपने लिए मजीद चीजों को देखेंगे। रिवायत किन की? हज़रत सहल बिन साद की। और रिवायत क्या है आप तो मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ दोहरा लें बाद में। मई यजमल ली मा बीना लह यही व मा बीना रिजलैही अज़मन लहुल जन्ना यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुझे उस चीज़ की जमानत दे जो इसके दोनों जबड़ों के दरमियान यानी जुबान और जो दोनों टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह, तो मैं इसको जन्नत की जमानत देता हूँ। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से जमानत अल्लाह के नबी ने दी है। आप तो अपनी मर्जी से किसी को ना जन्नती कहते थे ना जहन्नमी कहते थे। आज बाज़ लोग नासमझी में कह देते हैं कि अल्लाह के नबी जिसको चाहेंगे जन्नत में बुला लेंगे। बल्कि बाज़ दफ़ा हमने बड़ा लोगों से मोहब्बत भरा एक शिर्क सुना है, जी अल्लाह और उसके रसूल ने बुलाया है तो हम इधर आए हैं। जैसे अगर आप पर में हरम में या मदीना जाएंगे तो नातों में भी इस बात का इजहार होता है कि रसूल तू मुझे बुला ले, तो अल्लाह के नबी नहीं बुला सकते। लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम मुझे अपनी जुबान की गारंटी दे दो और शर्मगाह की। और शर जुबान औरतों का मामला है मुझे लगता है ज्यादा, और शर्मगाह मर्दों का मामला है। अगर औरतें अपनी जुबान पे काबू पा लें और मर्द अपनी शर्मगाह पे काबू पा लें तो दुनिया में से 80-90% फितने खत्म हो जाए। आज आप चारों तरफ देखें जहां बेहयाई या करप्शन है या जहां झगड़े फसाद और फ्रॉड और धोखे हैं उसके अंदर जुबान का दखल है। तो हमने लिस्ट जो बनाई थी उसमें सबसे पहली चीज किस चीज से जुबान को रोकना है, झूठ से रोकना है। क्या हमें कल से अब तक कोई फायदा हुआ? अपने आप से पूछें। अगर आज से आप अपना ये सफर शुरू कर रहे हैं तो सोचिए क्या झूठ से बचती हूँ। छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। इस पे हमारा एक और सीरीज है कुरान की किरणें, तो उसके अंदर मेरे हले दूसरा ही लेक्चर है जिसमें हमने सूरत बकरा की इब्तदाई 20 आयतों पे बात की थी। 100 के करीब हमने झूठ जमा किए थे जो मैंने बोल के रिकॉर्ड कराए थे, जो आम जुबान में बोल देते हैं। बच्चे को झूठ बोल देते हैं, मेहमानों से झूठ बोल देते हैं, दर्जियों से झूठ बोल देते हैं, रिक्शे वालों से झूठ बोलते हैं। हम तो रोज ही आते हैं, कल की फ्लाइट है, 2 दिन की फ्लाइट है, अम्मा घर नहीं है, अब्बू घर नहीं, अच्छा दिला दूंगी। आप जमा करके देखें तो सारा दिन झूठ से खेलते हैं। तो इनसे बचना है, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है कि मोमिन में नहीं हो सकता ना। अल्लाह के नबी ने यही फरमाया कि मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, मोमिन के अंदर मतलब मोमिन कंजूस भी हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। आज आप देखिए छोटी छोटी बात पे झूठ है, और अल्लाह ताला माफ करे हम सबको, नॉन मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिमों में झूठ है। अपने मुल्कों का झूठ तो हमारा मारूफ है, हाँ हो जाएगा काम आ जाइए, फिर जाएंगे तो काम नहीं होता, कितना काम लटकता है। तो ऊपर से लेके नीचे के इदारों तक झूठ है। तो फिर इसीलिए तो आज अल्लाह की रहमतें नहीं है, बरकतें नहीं है, हमें दूसरों की फिक्र नहीं अपनी फिक्र है। यहां बैठ के जब तवाफ करते हैं, आप एक तवाफ इस नियत का कीजिए कि मैंने अपने आप को बचाना है झूठ से, अल्लाह ताला मेरा झूठ उतार। देखिए जब लोग आते हैं ना हरम में, तो अक्सर सोचते हैं ना कि लंबी लंबी दुआओं की लिस्टें लाते हैं। मैं हर साल जब हर दफा जब भी अल्लाह लाता है मैं बेबस हो जाती हूँ इस बात पर। मुझे सबसे ज्यादा जो दुआएं मांगनी होती मुझे अपनी ही किरदार साजी की मांगनी होती हैं। अल्लाह मेरी ये बुरी आदत निकाल दे, अल्लाह मेरा तस्किया कर दे, अल्लाह मुझे संवार दे, अल्लाह मेरी कोई आदत, कोई मेरा कॉल, कोई बात जो इस दीन के रास्ते में रुकावट है, ये अल्लाह ये दूर कर दे। मैं इस दुआ को सबसे ज्यादा मांगती हूँ, यकीन करें कि अल्लाह ताला तू बस मेरे अंदर और बाहर को एक कर दे, मेरा जैसे जाहिर है मेरा बाहिन कर दे। अल्लाह तूने हमें अच्छी शक्ल और सूरत दी है तो हमें अंदर से अच्छा कर दे। तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम खुद खूबसूरत हो जाए तो जन्नत के काबिल होंगे। और यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें अभी से कि जिस जन्नत की तरफ अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं ना वो है खूबसूरत, कोई शक नहीं, उसमें नहरें हैं, फल हैं, फूल हैं, महलात हैं, सोने चांदी। लेकिन जन्नत का सबसे खूबसूरत जो रूप है ना वो वहाँ के इंसान है, और अल्लाह ताला हमें दुनिया में इस तरह बनाना चाहता है कि हम वो किरदार हासिल कर लें। दुनिया में आप देखिए किसी लड़की की शादी हो तो हस्बैंड बहुत बाखलाक है, अच्छे हैं, अखलाक के भी अच्छे हैं, हाल चाल पूछते हैं। इसी तरह आने वाली जो बीवी है वो बड़ी अच्छी हो तो हम कहते हैं ना कि वो घर जन्नत बन गया। और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हम सबको ही बुरे तजुर्बों से बचा के रखे, अगर किसी की शादी ऐसे मर्द से हो जाए जो जुबान का तेज है, गालियां देता है, या घर में कोई सास ऐसी हैं या कोई नंद ऐसी हैं वो बदतमीजी करती हैं, तो यकीन करें सोना चांदी भी अच्छा नहीं लगता। उसके बावजूद भी इंसान को कितनी तकलीफ होती है कि दिल नहीं खुश होता। तो आप सोचिए कि दुनिया जन्नत बन जाती है जब हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी जुबान अच्छी है, तो जन्नत में भी तो यही होगा। ये दुनिया एक ट्रेनिंग सेंटर है, अल्लाह ताला हमें एक अच्छी ट्रेनिंग दे के भेजता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि देखिए कि यहाँ आपको समझिए कि चुगलखोरी की आदत हो बिलफर्ज, और चुगलखोरी और गीबत का फर्क क्या होता है कि गीबत तो बंदा जुबान के चस्के पे करता है, चुगलखोरी में क्या होता है लड़ाई हो जाए यानी बेटे से बुराई करना बहू की ताकि इनकी झगड़ा हो जाए, या माँ की बुराई अपने शौहर से करना ताकि बेटा माँ को छोड़ दे, यानी चुगलखोरी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, उसके मोटिव्स बड़े रॉन्ग होते हैं। फिर इसी तरह देखिए गाली गलौज, धोखा फरेब, झूठी कस्में, बेअदबी, बुरे अखलाक, ये सारी चीज़ें इंसान के किरदार को मसख कर देती हैं। और आप देखें आपस के ताल्लुकात की खराबी हमेशा इन्हीं में से किसी चीज़ से होती। अब ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ तो कोई बात बात पे गाली दे तो जन्नत में जाते ही उसकी ज़ुबान से फूल झड़ने शुरू हो जाएं। कभी भी आप देखते हैं ना वो आदत छुटती नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं जी चोर चोरी से चला जाता है, सीना जोरी से नहीं जाता, तो आदतें नहीं बिगड़ बदलती। इसको यहाँ बदलना है, इस पे बहुत बात हुई है, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि इसकी सिर्फ लिस्ट तक ही रहें। लेकिन अगर ये बात हमारे जहन में रहे, ये देखिए इन्होंने भी ये बात लिखी हुई है कि इंसान की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलता है, सूरत काफ की आयत नंबर 1 है, शुरू की आयत है, सूरत काफ की आयत नंबर 18 है मेरा ख्याल, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीत। इंसान मुंह से कोई लफ्ज़ निकाल नहीं पाता मगर इसके पास निगेबान फरिश्ता इसकी बात लिखने के लिए तैयार होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़ुबान से सिर्फ अच्छी ही बात निकले। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम की एक रिवायत है अबू दाऊद में 5154 5154 नंबर की, मन काना यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औली यस्मुत। इतनी खूबसूरत ये हदीस है कि मैं सोचती हूँ कि अगर हम इसको अपना मोटो बना लें तो हमारी आधी से ज्यादा बातें तो बदल जाएंगी। आप मेरे साथ दोहराना चाहते हैं इसको? पढ़ते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औ लियस्मुत। मतलब के मन मैंने को, जो कोई काना हो युमिनु बिल्लाही ईमान लाता अल्लाह पर, यूमिनु बिल्लाही ईमान लाता अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, फल यकुल खैरन बस चाहिए कि वो खैर की बात कहे, औली यस्मुत या फिर चुप रहे। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे या फिर खामोश रहे। आप देखिए कितना खूबसूरत क्राइटेरिया है। इंग्लिश का एक इंग्लिश की एक कोटेशन कहीं पढ़ी थी कि उस वक्त बोलो, यानी खामोशी खूबसूरत है, बोलो कब, जब तुम्हारे पास खामोश रहने से ज्यादा खूबसूरत अल्फाज हो। यानी इंग्लिश में कुछ और भी कहावतें जहन में आ रही हैं जिनका खुलासा क्या है कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। खामोशी इबादत है, लेकिन खामोशी खूबसूरती, खामोशी से खूबसूरत बात के खैर। अच्छा सवाल पैदा होता है कि खैर क्या होती है, फल यकुल खैरन, तो सबसे बड़ी खैर क्या है, कोई आप में से बताएगा अपने सोच से? सबसे आसन बात क्या है दुनिया में जिसको अल्लाह ताला ने आसन कहा है? चलिए सूरत हामीम सजदा में कहा है, वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह वामिला सालिहन वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और उससे ज्यादा अच्छी बात किसकी है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और खुद भी अमल साले किए और अपने आप को मुसलमान कहलाया। यानी किसी मसलक से, किसी गिरोह से, पार्टी से नहीं जोड़ा खुद को, अपने आप को अल्लाह से जोड़ा और बंदों को रब से जोड़ा। इससे भी कोई अच्छी बात है तो क्या पता चला, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, आज की जुबान में इसको आप तबलीग कह सकते हैं। इससे भी कोई खूबसूरत बात होगी कि लोगों से कहो कि अल्लाह से जुड़ जाओ। आप देखिए दुनिया में लोग अमूमन क्या करते हैं, बातें करते हैं, फोन कॉल्स आपको आती हैं, कमर्शियल कॉल्स हैं, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमसे चीज ले लो, ऐसे ही करते हैं। कुछ बिजनेस डील्स होती हैं, खूबसूरत बातें करके लोगों से बेनिफिट्स लेने की कोशिशें लोग करते हैं। लेकिन जो बंदा आपको अल्लाह से जोड़े वो आपका कितना मुखलिस है, उसको आपसे क्या लेना है? ना उसकी जॉब है कि उसको पे लेनी है, ना उसका कोई कमीशन है कि चीज बेचेगा तो बीच में उसका कुछ हिस्सा होगा। अल्लाह से जोड़ना दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है। फिर इसी तरह सूरत बकरा में हम पढ़ते हैं, वकूलुल लिन्नासि हुस्ना, लोगों से हुस्ना की बात करो, अच्छी बात करो, तो गोया कि आप कह लीजिए कि बोलना अच्छी बात है, खामोशी से ज्यादा अच्छा है जब वो किसी अच्छे काम के लिए हो, और अगर अच्छी बात नहीं तो चुप रहो। चलिए हम इस पे अपने लिए एक क्राइटेरियन बनाते हैं, क्योंकि अब यहाँ सब अपनी तब्दीली के सफर के लिए आए हैं ना। हम मक्का क्यों आते हैं? चेंज होने आते हैं ना। बहुत नासमझी की बात होगी अगर कोई ये कहे कि हम यहाँ सिर्फ तवाफ करने आते हैं, हम यहाँ सही करने आते हैं, हम जमजम पीने आते हैं। कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्या है? आपने तवाफ में अल्लाह ताला से क्या बातें की? आपने अपनी जिंदगी का महवर क्या बनाया? सही से आपने अल्लाह से क्या बातें की कि अल्लाह मेरी जिंदगी की सही भी तो यही होगी? क्या मैं भी भाग दौड़ करूंगी हजरत हाजरा की तरह? उन्होंने अपने बच्चे की प्यास नहीं बुझाई थी, वो अपने बच्चे की प्यास के लिए नहीं परेशान थी, वो इंसानियत की प्यास के लिए परेशान थी कि दुनिया शिर्क से भरती जा रही है। तो किस तरह से अल्लाह ताला तू मेरे बच्चे को इसके लिए चुन? हजरत इब्राहिम ने ये जो कुर्बानी दी थी बीवी बच्चे को छोड़ने की, क्या सिर्फ ऐसी कुर्बानी थी? नहीं, बूढ़े इब्राहिम ने अपना घर एक किस्म का अलग कर लिया, लेकिन कहा कि अल्लाह का घर आबाद हो जाए। तो हमारी जिंदगी में ये सही होनी चाहिए, ये जिद्दोजहद होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके और आगे बढ़े। तो लिहाजा ये सारी बातें अल्लाह से करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें ये जो बात कही गई कि आखिरत पर भी ईमान हो, अल्लाह पर भी हो, तो फिर ये काम आसान होता है। हकीकत है कि बोलना बंदे को बहुत ही अच्छा लगता है। आज के दौर का तो जो कल्चर है वो सरसरा है, टू बी टॉकेटिव। सरसार कहते हैं अरबी जुबान में टॉकेटिव पर्सन को, बहुत ही बोलना, बेकार बोलना। अच्छा, अब आप यहां बैठे ना माशाल्लाह एक करोड़ बड़े अच्छे माहौल में, तो आप कहेंगे हाँ बड़ी बुरी बात है, नहीं अच्छा, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारी ये महफिल खत्म हो और आप मिसाल है कि पाकिस्तान वापस जाएं, चलिए और कुछ नहीं, लोग आपको ही मिलने आ जाएंगे, कोई फूलों के हार लेके आएगा, जी आप उमरा करके आई हैं, कोई आपकी दावतें करेगा, कुछ भी। आप जरा उन गैदरिंग्स में देखा करें जो बातें होती हैं, आधी 80% बातें बेकार, कीलो काल, क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर गए, क्या हुआ, क्या देखा, किधर ला, फिर हम डिस्कस शुरू हो जाते हैं लोगों को करने। नियत कीजिए, मैंने यहां से जाके यहां की कोई बुरी बात नहीं डिस्कस करनी, किसी को कोई खाते देखा ऐसे, वो गन डाल रहे थे, किसी ने आपसे भीख मांगी, किसी ने आपको धोखा दिया, मैंने नहीं करना, फल यस्मुत, मैंने चुप रहना। सिर्फ 3 सेकंड खुद को दें। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे सकती हूं कि खैर की बात करना है, खैर की बात करनी है या चुप रहना है, तो कैसे चुप करें? आदत जो है बोलने की, पटक से बोलते हैं, 1 सेकंड भी नियम लगाते, तो आप खुद से कहें अच्छा ठीक है, ओके मैं सिर्फ 3 सेकंड इंतजार करके बोलूंगी। मिसाल है आपको किसी ने कोई बुरी बात कह दी, कोई मियाँ ने गुस्से में बात कह दी, बच्चा तंग कर रहा है, कोई भी। इवन अब मैं फील करती हूँ कि सब्र ले आए ना अपने अंदर, तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपके ऊपर से गुजरेगा तो आप सही होंगे। 3 सेकंड नहीं बोलूंगी, चलिए बड़ी मुश्किल से 3 सेकंड गुजार लीजिए, अब थोड़े दिन इसकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप अपने आप को कि अच्छा अब मैं कोई किसी की गलत बात करके या मेरे दिल में कोई बात उछल रही है जो मैंने करनी है, तो मैं 5 सेकंड नहीं बोलूंगी, फिर जवाब दूंगी। इस तरह बढ़ाएं, 5 को 8 कर लें, 10 कर लें, फिर 15, फिर 1 मिनट में, बिलीव मी 1 महीने तक अगर आप रेडली 2 सेकंड बढ़ाते जाएं, 3 से शुरू किया, 2-2 करके आप 29 दिन में और आगे 30 सेकंड बढ़ा लें, एंड ऑफ द मंथ आपको चुप रहने की आदत हो जाएगी। मुझे इतनी अच्छी बात लगती है मेरी सास की, माशाल्लाह बहुत ही कम बोलती हैं। तो कभी जब शादी होती तो हम जाते थे मिलने बैठना, अच्छा अल्लाह रहम करे, ऐसे लगता था कि हम किसी जगह अफसोस के लिए आए हैं। खामोशी, ये भी चुप, खामोशी, वो भी खामोश, मेरे में और खामोशी, अम्मा पानी दूं, पानी दे देना, बैठना, बातें करना। तो हम जिस माहौल में पले बड़े, पाकिस्तान का कल्चर, और आपको तो पंजाब के लोग तो बहुत ही बोलते हैं माशाल्लाह, सारे ही बोलते हैं, लेकिन पंजाबी जरा बहुत बेतकल्लुफ होते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नाराज़ हैं आपस में, या इनके दिल में कोई गुस्सा है, या अल्लाह रहम करे कोई पाकिस्तान में गड़बड़ हो गई है, कोई गम की खबर सुनी हो जिसको ये छुपा रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि इनकी आदत है, और मेरी सास ही के लफ्ज कहती है खामोशी का भी तो अपना मजा होता है, जरूरी तो नहीं कि बोलो तो मजा आता है। वो बातें मैंने इतनी उनसे सीखी कि वाकई आप, मैं और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरा ख्याल हम सारे दिन में घंटों, हम मतलब घंटों से मराजिए कि पूरे दिन में गिन सकते हैं कितनी दफा हम बातें करते हैं। वो अपना काम करे, मैं अपना करी, थोड़ी बस स्माइल कर लिया, बात कर ली, कोई कर ली, इंतहाई खुशगवार मूड में होते हैं हम अपने घर में, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फालतू नहीं बोलते। वो अपनी को सुनाए कोई अच्छी बात है, मैं भी अपनी सुनाऊंगी, दर से जाऊंगी, क्या हुआ, अच्छा क्या पढ़ा, अच्छा और सुनाओ और सुनाओ, ये बातें हम सारी करते हैं, लेकिन कभी दूसरों को डिस्कस नहीं किया। तो मैंने देखा कि ये चीज फिर आदत बनते बनते आदत बन जाती है। तो आप इस उम्र से ये तोहफा लेकर जाए कम बोलना, और जितना कम बोलेंगे ना उतना गौर करेंगे। अब मैं 3 सेकंड खामोश होंगी ना, तो आप देखिएगा आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा, अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं अभी एक बात करती हूँ तो ऊपर दूसरी कर देती हूँ, तो आप सोच नहीं सकते। इसीलिए जब हम बहुत बोलने वाले लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर से गौर और फिक्र की आदत खत्म हो जाती है, सोचने की आदत खत्म हो जाती है। फिर जब सुनते सुनते इतना, तो टू मैनी इंफॉर्मेशन दिमाग में आती है ना, तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। आपने कभी फील किया कि बहुत दिन अगर आपको रोज शादियों में जाना पड़े रात को, या कोई शादी फंक्शन शुरू हो गए, यानी बहुत लोगों को मिले, तो आप डिस्टर्ब रहते हैं, और आपको किसी एक दिन अपने घर में सुकून से अपनी रूटीन लाइफ में गुजारना पड़े, तो आप कहते हैं आज बहुत सुकून से काम किया।
सुकून से बैठे हैं
जी, वजह उसकी क्या होती है कि हम जब घर में होते हैं ना, तो हमें टू मेनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, फिर यहाँ से बात निकलती जा रही है। पहले तो सिर्फ खुद बोल के हम बातें करते थे ना, बातें कर रहे हैं, अब आपने एक की सुनी, कुछ बात की, आपके दिल में कुछ आया, थोड़ी देर बाद दूसरे ने दुख सुनाया तो आपका दिल दुखी होगा, तीसरे ने कोई खुशी की बात सुनाई, सबका सर्वा। अब इस कमी को दूर कर दिया है मीडिया ने, हर वक्त चैनल्स, खबरें, इंफॉर्मेशन टिक 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 करते रहते हैं। अब मुझे बताइए कितना तो तुम्हारा दिमाग है, भेजा खाते ही होंगे, बकरे का कितना बनता है, पकाएंगे तो एक बकरे का भेजा एक ऑमलेट जितना होता है, तो बकरे का सर तो इतना बड़ा है, हमारा तो उससे भी छोटा है, का इंसानी दिमाग को देखे तो शायद एक छोटी चम्मच में है। अब इसके अंदर आप सारी खबरें दुनिया की डाल रहे हैं, फिर इसमें आप देखिए आप फोन्स के अंदर जो चट चिट चट चिट चट होगी, वाइबर, नेट, फुला फुला फुला, और सोने पे सुहागा कि अब मैंने जो अपने मुल्कों में देखा है, लोगों के पास एक एक बंदे के पास दो दो फोन होते हैं, और हर फोन में दो दो सिम्स हैं, भेला के बंदे आपके कान तो दो एक दो ही है, नहीं इसमें मेरी ये जाज की है, जाज की है, इसमें मेरी पता नहीं क्या क्या, अभी नई नई आई हूं तो मुझे कुछ नाम याद है, कुछ मेरी मदद कर दें, यू फोन
टेलीनॉर
चलता है,
टेलीनॉर
टेलीनॉर बायर है, पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर है वारिद है, एक फुलां, तो भाई ये आप इसका क्या मसला है भाई, अच्छा भाई आप एक ले लें, कहते नहीं इसमें मेरा नेट चलता है, इसमें मेरा पैकेज चल रहा है, इसमें मेरा अल्लाह की बना, मेरे में तो मुझे तो एक रब पे तौहीद पे फख्र है, यानी एक चीज आपके पास हो तो आपको सुकून मिलता है, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो बहरहाल सारी बातों का खुलासा क्या है कि हमें अपने आप को बचाना है। इतनी लंबी बात हमने जुबान पे कर ली है, हालांकि हम चुप रहना सीख रहे हैं, लेकिन हमने क्यों लंबी बात की, खैर की बात की ना, ये खैर है, क्योंकि ये हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, इस हदीस में हमारी बेस बन जाएगी। आप नोट करेंगे अगले जो आमाल आएंगे ना, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इसके साथ। आप दूसरी तरफ देख लीजिए शर्मगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गुमान से कह सकती हूँ कि औरतों में शर्मगा के फितने कम है, मिजाजन औरत के अंदर हया ज्यादा होती है, औरत अपने जिस्म को दूसरे मर्दों के सामने एक्सपोज करना पसंद नहीं करती। जितनी भी औरतें अगर आपको बाहर बेपर्दा दिखती भी है ना, कभी बदगुमानी ना करेंगे ये मर्दों को दिखाती हैं, असल में उनका प्रॉब्लम औरतें ही होती हैं, वो औरतों के बीच में निकाब नहीं कर सकती, या मतलब शो नहीं करना चाहती कि हम निकाब करते हैं, या स्काफ लेना या मेकअप या सजना संवरना शादियों में, ठीक है जब औरतों के लिए करती हैं तो मर्द भी देखते हैं, मजबूरी है, लेकिन नीयत के एतबार से बहुत थोड़ी औरतें हैं जो खास औरतें मर्द पे, खास तौर पर मर्दों को रिझाने के लिए करती हैं, लेकिन मर्दों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। फिर आप देखिए कि इसमें शर्मगाह की हिफाजत किस चीज़ से, नंबर एक जिना से, जो एक आखिरी कबाहत है, बदकारी, फिर कौमे लूत का अमल, लूती फेल जिसको आज के दौर में अब होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, पहले तो मैं ये दूर की चीज़ें लगती थी, अब इतनी करीब की चीज़ें लगती हैं, खासतौर पे आप में से जो साथी वेस्ट से आए हैं उनको अच्छी तरह पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी ये बातें सिखाई जाती हैं, पहले कौमे लूत था तो अब से हाक है, लेस्बियनिज्म है, पहले मर्दों में था अब औरतों में भी है, इन चीज़ों से बचना। और आपको तक इस वक्त वेस्ट में जो जोर दिया जा रहा है, वो कहते हैं कि इस चीज़ को आप बुरा ना कहें, यानी आने से पहले लंदन में मेरे साथ किसी ने शेयर किया अपने साथियों में, और जो कानून बनते हैं वो लोग खबरें सुनते हैं कि अब लॉ एक पैसा पास कर लिए कि आप मुस्लिम हैं, आपका बच्चा अगर स्कूल में आके ये कह देता है कि आपके माँ बाप होमोसेक्सुअलिटी को बुरा कहते हैं, तो हुकूमत, वो गवर्नमेंट हक रखती है कि आपका बच्चा आपसे ले ले, आप उनको ये बताएं कि ये ऐसा नहीं। अब ये इससे मिलते जुलते कोई बहुत ज़रा ज़बरदस्त किस्म का लॉ आया पिछले 2 माह पहले,
जैसे वहां पे गेज की शादी कॉमन है,
जी कॉमन हो गई, अब इसको जायज करार दे दिया ना, अब मुझे बताइए कि वहां गेजम हो गया, फिर शादी हो गई तो 50, 40, 30 साल के बाद मुसलमानों में भी आ जाएगा, हर कल्चर थोड़ा थोड़ा कदम ब कदम 5-10 साल बाद वहीं पहुंच जाता है ना। जी
जैसे हम दोस्त हैं आपस में मिलके हाथ पे हाथ डालते हैं ऐसे बैठे हुए हैं, तो वहां पे ये भी शर्म आती है कि नहीं,
जी ये नहीं करना। देखिए
हाँ,
हम एक जहाँ रहते हैं, अभी आने से पहले जहाँ थे, तो वो एक ही घर है तो उसके साथ डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हर एक का एक अपना यूनिट, एक यूनिट हमने लिया हुआ है बाकी के, तो हमसे हमारे से नीचे फ्लोर में एक लड़का और नहीं दो, एक लड़की थी, तो उसके साथ आते जाते सलाम दुआ आती है ना, तो एक दिन जब हम जा रहे थे उसके साथ एक और लड़की थी, मेरे साथ मेरी दोस्त थी जो मुझे कहीं पिक करने आई, तो वो मिली तो मैंने उसको आदतन हाय कहा, तो साथ उसके तो मैंने उसके तो शेयर कहती कहती शी इज माई फ्रेंड ऐसे कह के ना, तो फिर बड़े ऐसे आंख हटा के कहती शी जस्ट माई फ्रेंड। मुझे नहीं समझ आई, मैंने कहा जस्ट फ्रेंड कह के ये तो ये रहती है, तो मुझे पता आज इसकी दोस्त मिलने आई होगी। जब मैं नीचे आई तो जो मेरे सब सिस्टर थी कहती सास आपको पता चला ये क्या कह के गई? मैंने कहा ये कुछ नहीं। कहती नहीं उसने ये जो जोर दे के आंख के इशारे से जस्ट फ्रेंड है, उसने बताया कि यानी ये मेरी लेस्बियन साथी नहीं, ये मेरी फ्रेंड है बस, यानी
हाँ
मेरा इससे जिस्मानी ताल्लुक नहीं। औसुबिल्ला मैंने तो ये सोचा ही नहीं। कहती यहाँ इस तरह फर्क
मैंने भी नहीं
समझते हैं
सोचा।
कि कौन लड़कियां किस तरह की दोस्त हैं। अब आप बताइए इन इस कल्चर में जब हमारे बच्चे पलते हैं तो फिर हम इनको क्या अच्छे बुरे का फर्क नहीं बताएंगे? और इन चीजों को कौन सी चीज सबसे ज्यादा इनकी आंखें खोलेगी? अल्लाह की किताब। मैं और आप नहीं सिखा सकते, कुरान को समझेंगे हदीसें समझेंगे तो खुद ब खुद उनकी आंखें खुलेंगी। तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों को हमने बचाना
एक
है
बात कहनी है,
जी
मेरे
जरूर।
मियाँ मौलवियों से बहुत ज्यादा वो करते हैं, दाढ़ी भी नहीं रखी है उन्होंने, कहते हैं मैं बच्चों को पढ़ाने मौलवी साहब आते थे, बेटे को पढ़ाने भी आते थे वो भी जरा गलत पसंद के निकले, बेटे को पढ़ाने आए वो भी जरा गलत पसंद के निकले। कह नहीं मेरा तो मौलवियों के ऊपर से एतबार ही उड़ गया।
जी वही बात है ना, किसी एक आदमी का बुरा
नहीं हुआ हुआ
तजुर्बा
सही है,
दूसरों पे
बड़े
आ
होशियार
जाए।
होते हैं वो, सब तो खराब नहीं हो सकते, लेकिन इस तरह हुआ ना
जी
तो
जी
एक्सपीरियंस
जी
इंसान
बिल्कुल सच कह रहे हैं कि
बस
जब
वो तो हुआ
एतमाद,
भी और वो इस तरह कहते हैं
अल्लाह ताला
आज
माफ
के
करे,
बाद चला
बिल्कुल
चले
जैसे
जाए। और मैं काम करते करते देख रही हूँ, मैंने कहा आपको क्या हो गया, निकली फॉरन बाहर जाइए, आप ये लीजिए आपके पैसे जितने दिन आपने पढ़ाए, फॉरन आज के बाद आप नजर नहीं आइएगा यहाँ।
बस वही है,
वो
निगाह
मेरा
में
चेहरा
चले
देखा
जाते
निकल
हैं।
के,
राधा बच्चों को छोड़ो तो देखो बात
देखिए
करती हूँ,
दीनदारी जो है ना वो
कभी सुना
दुकानदारी
भी
बन
नहीं
जाती है ना।
जाता उस
तो
तरफ इंसान का,
एक
कोई
एक होते कुरान के
क्यों
अल्फाज पढ़ना बच्चों को पढ़ाना, एक उसकी रूह, बहुत फर्क है दोनों का। यही तो सारी बात है, आज दीन का जाहिर है लेकिन रूह नहीं दिखती, जिससे दिल बदल जाए वो तालीम हमने अपने बच्चों को इंशाल्लाह देनी है जिससे उनके दिल बदले। जी आप सलमा।
मैं एक बात की ओर बढ़ना जा रही थी, उन्हीं की बात से आया, मुरीद साहब को आप सबने माशाल्लाह जाहिर बढ़ने तफहीमुल कुरान से, उनसे किसी ने पूछा था अभी आपकी बात से जहन में आया कि मुरीद साहब क्या करें धंधा के अल्लाह ताला उनको रहमत जगह दे, कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब ज़माना आ गया, जमाने को तो खराब कहते हम अपने आप को खराब नहीं कहते ना, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कहते हैं आजकल जी वो इतने चोर हैं कि नकाबों वाली बीबियां जो हैं वो सारी इतनी मिलता पता नहीं चलता, और चोर भी हैं तो दाढ़ियों वाले जो हैं वो सब चोरियां करें। तो मैंने कहा मेरे भैया बात ये नहीं है, बात ये है कि चोरों ने भेष बदलने के लिए दाढ़ियां रख ली हैं, दाढ़ियों वालों ने चोरियां शुरू
हाँ,
नहीं की।
ये
ठीक
बात
है,
आपकी सही है,
तो मेरी बहन कभी भी जाहिर की दाढ़ी पे, अभी जो साजा ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि एक शख्स एक एक्सपीरियंस या दूसरे उसी इंडिया वाले
हाँ,
बंदे को बुरा
जी
नहीं कह
जी
सकते,
ज्यादातर जो हमारे सामने जो गुजरा ना वो
जी
दाढ़ी वाले ही इस तरह के गुजरे,
तो ये अलग बात है कि
ट्रैफिक में आगे निकालना दाढ़ी वाले, इतनी बड़ी दाढ़ी मेरे में, कहते देखो इतनी बड़ी दाढ़ी है और ये
जी असल यही बात है। तो
क्या कर
देखिए
रहे
हम इस बात को यहाँ पे पूरा करते हैं
हैं।
कि इंशाल्लाह ताला हमने अपनी इसलाह करनी है, अपने मर्दों की, अपने बच्चों की, और ये खास तौर पे जिस मौजू को हम देख रहे हैं शर्मगाह की हिफाजत, तो इसका सिलसिला माएँ कैसे शुरू कर सकती हैं? छोटे होते हुए अपने बच्चों की हिफाजत करें, लड़के हैं बच्चे हैं बेटियां हैं, उनके कपड़े उनका पहनना उठना, उनको दूसरों के साथ ना सोने दें, अकेले ना कहीं जाने दें, बच्चियां छोटी छोटी उनको बाहया लिबास पहनाएं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जैसे इस्लाम ने कहा कि जल्द से जल्द शादी करो, बहुत देर तक बच्चों को बिठा नहीं रखना, जूं ही आपको महसूस हो कि इनके अंदर ये फीलिंग्स आ गई हैं तो फिर इस वक्त इनको आप यानी अपने घर का करें। निकाह से भी बहुत ज्यादा निकाह शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम की यह हदीस है कि जवानों की जमात से आपने क्या कहा कि तुम में से जिसे निकाह की ताकत तो उसे निकाह करना चाहिए, क्योंकि निकाह निगाह नजर को झुकाने वाला और शर्मगाह को महफूज रखने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारे लिए इस बात को आसान करे। खुलासा क्या है इसमें से हमने क्या सीखा? आपकी लिस्ट में दो चीजें शामिल हो गई। अगर आप चाहें तो अपने पास इसी बुक के आखिरी पेज पे या अपने पास किसी भी नोटबुक पे तरतीब से बनाते जाएं कि जन्नत में जाने के आमाल में से पहली चीज जुबान की हिफाजत और दूसरी चीज शर्मगाह की हिफाजत है। इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। अगली अहादीस में कुछ चीजें और भी जुबान से मुतल्लिक आएंगी, तो बस नोट करते जाएंगे, जितना सुनते जाएंगे उतना इंशाल्लाह हमारे लिए आसान हो जाएगा। कोई बात, कोई इसमें जो आपको समझ ना आई हो या कुछ ऐसी बात जो फायदे की है कहना चाहें तो आप एक आधा मिनट ले सकते हैं। बात वैसे बहुत आम फहम है। الحمدللہ. تو اگلی حدیث پہ چلتے. جی جی یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ ہم تو غیبت نہیں کرتے, دوسرے کرنے لگ جائیں تو کیا کریں. اس کا ایک تو میں آپ کو ہوم ورک ہی دے دوں گی, قرآن کی کرنے میں سورہ حجرات جب ہم نے پڑھی تھی وہ اس سٹائل سے پڑھی تھی, ڈسکشن کا سٹائل تھا. آپ اس کی آڈیو سن کے دیکھیں تو اس میں ٹپس بہت پریکٹیکل دی تھی, جس میں چند مثال دے دیتی ہوں آپ کو چند کی, کہ جیسے آپ سے کوئی بات کرنے لگے نا کسی کی کرے تو کہنے فون پکڑ لیں, کہنے کہ اچھا میں بھی ان سے پوچھتی ہوں. جس نے آپ سے کسی تیسرے کی بات کی ہے نا, آپ اس کو احساس دلائیں کہ اچھا میں ضرور ابھی اس سے پوچھتی ہوں, وہ فوراً دیکھیے گا ڈر جائیں گے, نہیں 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 بھائی میرے پہ بات آئے گی, ایسے نہیں. پھر دوسرا تھوڑا سا ان کو مصروف کر دیں, بات نہ کریں, انہیں کہیں کہ دیکھیں ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. پھر گھر میں بچوں کے ساتھ مل کے فیملی کے ساتھ آپ ایک کوڈ ورڈ رکھ لیں, جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. کوڈ ورڈ رکھ لیں اپنے بچوں میں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے, اگر میں کرنے لگوں تو مجھے یاد کرا دو. اب ٹوکنا تو اچھا نہیں لگتا, خاص طور پہ جب بچے بڑوں کو ٹوکے تو اور برے لگتے ہیں, تو اس کا کوئی کوڈ ورڈ, جیسے ایک کسی نے اپنی شیئرنگ کی تھی کہ میں نے ہم اب اس کے لیے کوڈ ورڈ کیا تھا, جیسے گوشت, یا کسی نے کہا مردہ بھائی. تو کوئی بھی غیبت کرنے لگتا تھا تو گھر میں جو دوسرا بندہ تھا وہ اس کو یاد دلا دیتا تھا گوشت یا فلیش یا کچھ ایسے, تو پھر اس کو سمجھ یاد آ جاتا ہے, کیونکہ عادت ہوتی ہے نا, تو چھٹتے چھٹتے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسان کرے. چلیے دوسری حدیث پہ چلتے. فضول گفتگو سے اجتناب, کافی زیادہ پچھلے سے ملتی ہے لیکن اس کو پڑھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سمت نجا, دہرائیے گا آپ بھی, من سمت نجا, من میں نے جس نے سمت خاموشی اختیار کی, نجا وہ نجات پا گیا, یعنی خاموشی بہتر ہے. اب آپ دیکھیں یہ ہے وہ حدیث جس کو پڑھ کے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہی اتنے تھوڑے ہیں, من سمت نجا بھی آتا ہے اور ایک اور روایت میں نجا من سمت بھی آتا ہے, وہی لفظ ہے لیکن فرق آگے پیچھے کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نجات پا گیا جو خاموش رہا, کس چیز سے نجات پا گیا؟ پہلی بات دیکھیے وقت ضائع ہونے سے نجات پا گیا. ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارا وقت کتنا لگتا ہے, آپ امیجن کیجئے کوئی آپ کو ملنے آیا, حال چال پوچھا, پانی پوچھا, کچھ خاطر کی, آپ باتیں نہیں زیادہ کر رہے ادھر ادھر کی, 15-20 منٹ میں کہیں گے آپ چلتے ہیں. عموماً جو لوگ گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور آدھی آدھی رات تک پھر دعوتوں کے بعد بیٹھ رہے تھے, وہ بولے کیوں بیٹھتے ہیں, باتیں باتیں باتیں. آپ کم بولیں گے نا بہت کم لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ وقت ضائع ہونے سے بچ جائیں گے. پھر آپ کس چیز سے نجات پاتے ہیں؟ غلطیوں سے نجات پا جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ہم کم بولتے ہیں خاموش رہتے ہیں تو کئی الزام ہم پہ نہیں لگتے. کوئی کہے گا یہ تو بولی نہیں, ان کی کیا بات کریں, کیونکہ جو بہت بولتے ہیں نا بعد میں آپ دیکھیں جھگڑے ان کے سر پہ پڑتے ہیں, یہ بولی تھی, انہوں نے لڑائی کرائی ہے, انہوں نے غیبت کی ہوگی. تو واقعی اس روایت کو میں اور آپ زبانی یاد کر لیں, کرنا چاہتے ہیں؟ من سمتا نجا, تین لفظ ہیں, من سمتا نجا, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اگلی روایت دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کا مالک ہے, یعنی اسے غلط استعمال سے روکنے کی قدرت رکھتا ہے, پہلی خوبی ہے اس کی یہ. دوسری خوبی کہ جس کا گھر اسے کافی ہے اور جو اپنے گناہوں کی شامت سے گھبرا کر رو پڑا, ٹھیک ہے؟ تین چیزیں, اور یہی بات آپ کو اگلی حدیث میں اللہ کے نبی کی نصیحت کے طور پر عقبہ بن عامر سے ملے گی. روایت کرتے ہیں عقبہ بن عامر کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نجات کیا ہے, یعنی کس چیز کے سبب نجات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو روکے رکھو, پہلی بات, ول یساک بیتک, اور کافی ہو تجھ کو تیرا ہی گھر, یعنی تیرا گھر کافی ہو, یعنی فالتو گھروں گھر سے نہ نکلا کر. اور دیکھیے عورتوں کو نہیں کہہ رہے, مرد کو کہہ رہے ہیں کہ بلا مقصد گھر سے نہ نکلا کرو. اور تیسرا کام, وب کی اللہ خطی عتیقہ, اور رویا کر اپنی خطاؤں پہ. اب آپ میرے ساتھ دہرائیں گے ایک ایک لفظ کو, امسک علیک لسانک ول یساک بیتک وب کی اللہ خطیعتک, ٹھیک ہے؟ تو تین چیزیں ان دونوں روایتوں سے ملتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کو روکو, देखिए अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी है, जुबान को रोको, जुबान का काबू। फिर दूसरी चीज के कि बिला जरूरत घर से ना निकलो। अब आप देखिए कि औरतों को तो अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कुरान में फरमा दिया, वकर्न फी बुयूतिकुन, अपने घरों में करार पकड़ो। लेकिन मर्दों के लिए क्या हुक्म है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए जरूरत के तहत तो मर्द भी निकलेगा तो औरत भी निकलेगी। तबीयतन और मिजाजन अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर घर से बाहर जाना ज्यादा रखा है औरत की निस्बत। आम औरत जिसका मिजाज बिगड़ा ना होना तो आप देखेंगे कि वो घर में रहना पसंद करती है। एक से दो दफा आपको जाना पड़ जाए ना घर से बाहर, तो घर के काम ही नहीं खत्म होते, सच है कि नहीं? और अल्लाह ना करे अगर आप बाजार चली गई तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा। बहुत टू मच मिक्सिंग, लोगों को मिलना, इख्तलात, मन नास पसंदीदा नहीं है, ठीक है? लेकिन मर्दों के लिए अब हमारे जहन में क्या, किधर हैं? बस शाम को निकल गए, दोस्तों के साथ बैठे हैं, चाय है, चांद लिया है, पान है, पसंदीदा नहीं। जरूरत से निकले, वक्त पे निकले, वक्त पे घर से आए, घर में आए। तो इसके लिए भी हमें थोड़ी सी अपनी सेटिंग सही करनी पड़ेगी। हमारे घरों के आजकल माहौल बहुत खराब है, इस लिहाज से हो गए सोने और जागने के वक्त ठीक नहीं रहे। अगर हम नमाजों के औकात को अपने सोने और जागने की दलील बना ले, फजर से पहले जागना और ईशा के फौरन बाद सोना, ये दो मेयार बना ले। आज आप इसकी अपनियत करें, क्योंकि अभी तक जो हमारी चेकलिस्ट है उसमें जुबान आई है, प्राइवेट पार्ट की बात आई है। अब ये तीसरी चीज आप अपनी लिस्ट में डाल लें कि घर के अंदर रहने को आदत कैसे बनाऊंगी। अपनी और अपने शौहर और अपने बच्चों की रूटीन सेट करें। आज यकीन करें तकलीफ होती है बहुत, खास तौर पे जब हम अपने मुस्लिम मुल्कों में जाकर अपने भाई बहनों के घरों के माहौल देखते हैं। किसी के सोने का वक्त नहीं पता, आधी आधी रात गुजरती कहते अभी तो ये है, अभी तो चाय, अभी तो छाली, अभी तो आइसक्रीम खाने जाएंगे, अभी तो टिक्के खाएंगे। शादियां अब गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल्ड हो गई हैं कि 10 बजे हॉल बंद कर देते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने माल दिया है या इख्तियार दिया है वो उसको भी मिसयूज करते हैं। दो दो तीन तीन बजे आप फंक्शन से हो रहे हैं। आम दावत जो मैंने देखा है पाकिस्तान में, लोग खा के घर वापस आते हैं 1 से 2 बजे। अब मुझे बताइए जो 2 बजे घर आया तो जाहिर है कि कपड़े चेंज करना, घर में आके सोने की तैयारी, 1 घंटा तो लगेगा ना। फजर किधर गई? और फजर के वक्त यूं खराटे लोग भर रहे होते हैं, अल्लाह रहम करे, कि जानवरों की तरह आवाजें मुंह से निकलती हैं और शैतान थपकियां देके सुलाता है। चलिए हम इस उम्र में ये नियत करते हैं कि हमने अपने घर में सोने जागने के वक्त मुकर्रर करने। अब इसको एकदम जाके ना आप सादिर ना करते, करना 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 डू डू, फिर घर वाले ऑफेंड होंगे। माहौल ऐसा बनाए, फैमिली को साथ ले, कोशिश करें। चलो आप इधर अकेली आई हैं या आप में से कुछ लोग फैमिलीज के साथ भी आए, अब यहाँ ये बातें करें। चलो बच्चों ये करना है, बेटा है तो बेटे को साथ मिलाएं, शौहर है तो उनको मिलाएं, अगर फैमिली है तो फिर तो सोने पे सोगा। जैसे अब शिवाना आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली है, छोटे बच्चे भी है बड़े भी है, उनको फर्क दिखे यहाँ आकर इस चीज का कि यहाँ हम एक ट्रेनिंग सेशन पे आए हैं। सोने में, बोलने में, खाने में, बैठने में, बोलने में, हर चीज में उनको मुख्तात करें, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जब आपने ये असूल बना लिया कि सारे घर के लोग फजर से पहले जागेंगे, देखिए यहाँ आप 4 बजे उठ के जाते हैं ना, लाइनें लगती हैं, कितनी मुश्किल शहरों में पहुंचते हैं, तो फिर जाके कहीं आप तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर फजर के लिए इंतजार करते हैं, फिर सनराइज तक आते हैं ना, तो क्या ये सारा काम आप पाकिस्तान या इंडिया या अमेरिका या कैनेडा या लंदन नॉर्वे जाके नहीं कर सकते? अल्लाह का घर इधर है, अल्लाह तो हर जगह है। यहाँ इमाम साहब के पीछे आप नमाज पढ़े, ठीक है ये इमाम काबा है, लेकिन आपकी मस्जिदों के इमाम तो हर जगह। मुझे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं लगता यहाँ आके, ठीक है सब एक माहौल होता है, यही जिंदगी पीछे भी है, यही वहां भी आपकी जिंदगी की रूटीन बनती है, लेकिन जो ये जो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है ना हमारे माहौल में, इसका मतलब यह है कि हमारा आम रहने का माहौल दुरुस्त नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। इसी तरह घर में ये बात कर लें कि ईशा के बाद बिला जरूरत कोई घर से बाहर नहीं रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फ्रेंड्स, भाई बहन अगर उसी मुल्क में शहर में रहते हैं उनको बता दें कि कहीं दावत होगी फलां का, मेरी डेडलाइन 10 o'clock है, मैं वापस आ जाऊंगी, आप सब बैठे मैं जा रही हूं, जल्दी जाएं, खाना जल्दी खुलेगा। बिलीफ में अगर आप एक दावत में ऐसा करके आ गई ना तो आप देखिए अगली दावत का टाइम खुद ब खुद ही 10 नहीं तो 10:30 पे आ जाएगा, और 1-2 मौकों के बाद सारे ही कहेंगे कि अब एक उठ गया तो हम भी चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है महफिलों में, एक उठ के जाता है ना फिर बाकियों का भी दिल नहीं लगता, ठीक है, तो इंशाल्लाह हमने अपने घरों के अंदर रहने को रखना है। तीसरी चीज अब आप अपनी उस लिस्ट में, यानी ये नंबर 4 आएगा आपकी लिस्ट में, और वो क्या है कि अपने गुनाहों पे रोना। आप सोचिए, मैं इसको पढ़ते हुए खुद से ही पूछ रही हूं, आप भी पूछें, कब आखिरी बार मैं अपने गुनाह पे रोई थी। हम कब रोते हैं? अपनों की जुदाई पे रोते हैं, जिस समय दर्द होता है तो रोते हैं हम, माली परेशानियों पे रोते हैं, शौहर की किसी बात पे रोते हैं, लोगों की बातों के तानों पे रोते हैं, 100 रीजंस है ना हमारे पास रोने की, ये नहीं है तो रोते हैं, वो नहीं है तो रोते हैं। कब आखिरी बार हम अपने गुनाहों पे रोए? मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हमें अल्लाह के नबी की सच्चाई पे यकीन है? यकीन है ना, हमें पता है कि अल्लाह के नबी जो कहेंगे वो होगा। आप अपने सहाबी को कह रहे हैं कि तू निजात पाना चाहता है तो अपने गुनाहों पे रो, तो आज से अपने गुनाहों पे रोना है। अपने आप को चंद मिनट दें, इसको भी आप आदत बनाएं। कैसे? थोड़े से शुरू करें, जैसे 24 घंटे में 5 मिनट रात दिन के ऐसे रख ले, ना आपके पास आपके बच्चे हो, ना मियाँ, ना कोई और, आप अकेले अपने कमरे में, किसी नमाज के बाद भी हो सकता है, किसी क्लास के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसमें 100% आप फोकस्ड हो और आप उधर बैठ के सोचें, आज मैंने क्या गुनाह किया। देखिए, यहाँ गुनाह पे शर्मिंदगी पे रोएगा कौन? जिसको याद होगा गुनाह किए। हम चूंकि इतने सारे कर चुके होते हैं, अब हम कहते हैं आप गुनाह भी करते हैं, ऊपर शर्मिंदा है, किस किस गुनाह पे शर्मिंदा हो। सहाबा कराम का हाल ये था कि एक गुनाह होता था उनसे तो उस गुनाह के ऊपर वो घर नहीं जाते थे, अल्लाह के नबी के पास आते थे। आपने गामदी औरत का किस्सा सुना होगा, जिना हो गया, अल्लाह के नबी के पास आ गई, और जब तक हद ना लग गई चैन ही नहीं आया कि गुनाह सोने नहीं देता। फिर इसी तरह एक सहाबी थे, उनसे भी ये फेल हुआ, उन्होंने भी आकर हद लगवाई। ये क्या चीज़ है? हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक मौके पे देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत उमर ने देखा तो वो क्या थे, सॉरी एक मिनट लीजिए जी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को देखा उमर फारूक ने कि अपनी जुबान पकड़े हुए ऐसे देखिएगा, पकड़ के तो उसको खींच रहे हैं। कहा, या अबू बकर ये क्या हो गया? कहा, ये बड़ी तेज घाटी हो गई, इसको अपने काबू में ला रहा हूं। इतना वो डरते थे अपनी जुबान से, अपने गुनाहों पे गम था। हंजला एक दिन जाते जा रहे हैं और कह रहे हैं नाफक हंजला नाफक हंजला, अबू बकर मिले का भी हंजला क्या हो गया? कहा, जो दिल की हालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होती है वो घर जाके नहीं होते, वहां से मस्जिद से निकलते हैं, बीवी बच्चों के कामों में पड़ते हैं। कहा, अच्छा ये तो मेरे साथ भी होता है, तो इसका तो मैं भी मुनाफिक हो गया हूं। वो भी इसी गम में दोनों अल्लाह के नबी के पास पहुंचते हैं, ये गुनाहों का गम है ना लगा हुआ। और अल्लाह के नबी को जब उन्होंने अपनी कैफियत बताई तो आपने क्या कहा कि गम ना करो, जो कैफियत तुम्हारी मेरे पास बैठ के होती है, अगर आम जिंदगी में भी वही हो तो फरिश्ते तुम्हारे घरों में आके तुमसे मुसाफा करें। तो गम था ना उनको गुनाहों का, तो अपने गुनाहों पे गम। इसके लिए तरीकाकार आसानी से हम डिस्कस कर लेते हैं, कागज कलम बना लें। बचपन में भी लोगों को शौक होता है लिखने का, जवानी में तो डायरी लिखने का बहुत शौक होता है, और वो अपने किरामन कातिबीन बने होते हैं, इतने बजे उठी थी, इतने बजे सोई थी, और फिर वो उन डायरियों को ताले लगा के छुपाते फिरते हैं, कोई को पढ़ ना ले हमारे नाम अमाल है। लेकिन अब आप वाकई एक डायरी बनाएं, रियली आप पढ़ना लिखना ज्यादा जानते हैं, आदी है नहीं है, नो प्रॉब्लम, और फोन पे बनाएं या किसी जगह बनाएं, अपनी डायरी बनाएं, मेरी जिंदगी मेरी किताब, सुबह से शाम तक क्या गुनाहों में मुझसे लिखे। सोचेंगे ना आपको इतने गुनाह याद आएंगे कि कुछ तो गुनाह ऐसे होते हैं वो याद रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह याद नहीं होते। चलिए शुरू में बड़े बड़े गुनाहों पे आ जाएं, फिर क्या करें उस गुनाह को याद करें। मिसाल देती हूँ कि जैसे अब यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हमसे क्या गुनाह हो सकता है, नेकियां करते हैं उसमें भी गुनाह होते हैं, हो सकता है चलते चलते किसी के ऊपर पाँव लग गया, किसी की जगह ले ली, किसी को धक्का दे दिया, कुछ ना कुछ हुआ ना, इसको भी याद करें और फिर रोए, फिर उस बंदे की तरफ से माफी मांगे कि अल्लाह तो उसके गुनाहों को माफ कर दे जिसको मेरी वजह से तकलीफ हुई थी। बहुत इंसानी मामलात में छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, घर वालों के साथ कई दफा हम हक तलफियां कर देते हैं, किसी के आगे बोल पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह जब हम ढूंढेंगे, आदत पड़ेगी ना, तो वो जैसे दूसरों के ऐप चुनते थे ना, अब अपने चुनना है इंशाल्लाह। करना चाहते हैं कोई आप में से इस बात पे खास तौर पे कुछ अपना इनपुट देना चाहे कि हम अपने गुनाहों पे कैसे रोए, तो मोस्ट वेलकम। आप कहते हैं कि हजरत नूह को हजरत नूह क्यों कहते थे, इनका नाम नूह नहीं था, इनका नाम अब्दुश शकूर था, लेकिन ये अपने गुनाहों पे इतना रोते थे कि नूह से मुराद नोहा करने वाला, यानी नूह से मुराद वो शख्स जो बहुत ही रोता है। अब ये वो नोहा नहीं है जो गम और मातम में लोग करते हैं, अपने गुनाहों पे रोते थे। और हमारे असलाफ जो थे वो इतना रोते थे अपने गुनाहों पे कि उनके चेहरे पे निशान पड़ जाते थे। आप इनकी खशियत के वाक़ सुनना चाहें तो लिल्लाहि मा फिस्समावाति की जो तफसीर है सूरह बकरा का आखिरी रुकू है सफीलुल जन्ना में, काफ़ी लोगों के कमेंट्स जो थे वो मैंने पढ़ के सुनाए थे कि वो कितना रोते थे अपने गुनाहों पर। हज़रत उमर को एक मौके पर किसी ने कहा कि या उमर इत्ता किल्ला, तो हज़रत उमर इतना रोए कि अपना गाल जाके ज़मीन पर चिपका दिया कि तुमने मुझे इतनी बड़ी ज़ात से डराए। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें भी अपने गुनाहों का गम लगा दे। और आप फील करेंगे जितना आपको अपना गम लग जाएगा ना उतना आप दूसरों से बेगम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अब लिस्ट में कितनी चीजें हैं, कौन दोहराएगा शुरू से एक एक करके? पहली चीज क्या थी लिस्ट में? जुबान की हिफाजत जी सदब। दूसरी चीज शर्म की हिफाजत। तीसरी चीज हमने अभी क्या पढ़ी जी? घर में रहने का एहतमाम करना। और अगली चीज क्या पढ़ी हमने? गुनाहों पर रोना। ठीक है, अब हम अगली चीज जो हमें अगली हदीस से मिलेगी, खुफिया और ऐलानिया अल्लाह से डरना, मियाना रवि इख्तियार करना और अदल करना। रिवायत किन की है? हजरत अनस से। हजरत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मंजियातुन, तीन चीजें निजात दिलाने वाली हैं। मंजियात निजात से ही है। कौन सी पहली चीज है? खशयतुल्लाह फिस्सर्री, अल्लाह का डर छुपे हुए हालत में भी, वल एलानियती और एलानिया भी, यानी हर हाल में अकेले हों या दूसरों के साथ भी हों, दोनों में अल्लाह से डरना है। क्योंकि लोगों के सामने तो बंदा अल्लाह से डर जाता है कभी, लेकिन अकेले में नहीं डरता। फिर दूसरी चीज वल कस्द फिल फकरी वलगिना, मियाना रवि इख्तियार करना फकीरी के दिनों, यानी गुरबत है, मियाँ जॉबलेस है, काम नहीं चल रहा, तब भी आप खर्च करने में बहुत ज्यादा आगे ना हो। वलगिना, और जब आपको दौलत हो, मिल जाए बहुत पैसा आ गया तो उसको भी जाया नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज के वलदलू फिल गदबी वर्रिदा, अदल करना, इंसाफ करना, गजब की हालत में भी और खुशी की हालत में भी। क्या मतलब है? पहली चीज देखिए, खुफिया और ऐलानिया अल्लाह से डरना, ये दोनों चीजों में फर्क है। खुफिया कह के कोई नहीं आपको देख रहा, सिर्फ अल्लाह का डर है और आप किसी गुनाह से रुकते हैं, अल्लाह को कितना अच्छा लगता होगा। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह को उस बंदे पे आ आती है कि जो दूसरों को देख के गुनाह छोड़ देता है, अकेले में कर लेता है। अल्लाह ताला कहते हैं इसको मेरा लिहाज नहीं है, लोगों का लिहाज ज्यादा है। ठीक है, तो इसको अपने ऊपर लाने के लिए करना क्या है? लोगों के खौफ से खुद को आजाद करें। लोग क्या मुझे देंगे, और अल्लाह की नेमतों के अपने ऊपर लें। अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है, अल्लाह का मेरे ऊपर कितना इनाम है। इंशाल्लाह जब आप ये सारी चीजें महसूस करेंगे तो आप दिन ब दिन अपने आप को इस चीज के ऊपर लेके आएंगे। फिर उसके बाद देखिए कि ये जो बात है, वल कस्त फिल गिना फकरी वल गिना, इसकी आज बहुत ज़रूरत है। मैं फिर तबीयत के अतबार से कह दूं कि फिर तरबियत औलाद ही पे आ जाऊंगी। बस दफ़ा हमारे पास जब अल्लाह की तरफ से नेमतें बहुत होती हैं तो हम अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी इस चीज़ का आदि कर लेते हैं, चलो कुछ नहीं होता। अब छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप जमजम लेने के लिए खड़े हुए, आप वहां से जब ग्लास हुक कर उतारते हैं ना, आप देखिए कि आप अगर एक हाथ से उतारेंगे ना तो एक वक्त में दो ग्लास उतरते हैं। 80% लोग वो दो ग्लासों में ही इकट्ठा पानी पीते हैं और कट के उसको फेंक देते हैं। ये देखिए कि अभी भी रास्ते में पानी पिया तो मैं अपना ग्लास हाथ में ही लेके आई हूँ। सुबह पिया जमजम तो आफ किया, घर आने तक ग्लास साथ रखा कि फिर इसमें दोबारा पी लूंगी। अब बताइए ना, मेरे पैसे लगे, मैं एक ही जगह 10 भी फेंक दूं, लेकिन ये ग्लास कहां बना इतना इस पे, चाहे इसमें फ्यू पेंस लगे, किसी ने तो दिए ना, मैंने नहीं दिए, अल्लाह के किसी बंदे ने, हुकूमत ने दिए, किसी ने वक्फ किए। क्या मैं एक दफा अपना पानी पीना इतना बड़ी बात कर लूं कि उसको पकड़ू और ग्लास को फेंक दूं? और अपने ग्लास में हम दोबारा नहीं पीते। मस्जिदों में जाके देखिए, एक की जगह चार चार टिश्यू लोग पकड़ लेते हैं, जाया करते हैं चीजें। अब क्या है कि हमारे पास जी बहुत है तो दे सकते हैं, अफोर्ड करते हैं। आप होटलों में रहते हैं, यहां देखिए होटल्स में आप फोन करें आपको वो दो टॉवल दे देंगे, आप फोन करें उनसे 10 फोन। अब यहां फ्री साबुन है, सोप है, आप फेंके, किसने हिसाब देना है? आपने देना है। कई दफा कहते हैं ऑल यू कैन ईट, ये सुबह का एक्सपीरियंस बता देती हूँ आपको, आप लोग भी जहाँ रहते हैं बफेट साथ ही होता है नाश्ते का। अब सबसे बड़ी उसमें जो तकलीफ होती है वो गुजरते हुए लोगों के टेबल्स पे बचे हुए खाने के ढेर
ज़्यादा निकाल लेते हैं।
सुबह ही हम ये कह रहे थे यही इसी तरह।
यकीन करें कि इस तरह से क्रोसांट्स एक टेबल पे थे जब मैं अभी एंटर ही हुई हूँ, और माशाल्लाह चीज़ और जो कुछ भी था, लेकिन मैं जब आखिरी चक्कर पे उधर से अपनी चीज़ लेने गई ना तो वहाँ और कोई नहीं था, लेकिन वो क्रोसांट पड़े हुए थे और खा के वो खाए थे। और आप ये देखिए कि सोचिए कि होटल्स वाले अगर वो दोबारा हमें खिलाएंगे तो हम कहेंगे नॉन हाइजीनिक है, फेंकेंगे ना हम लोग। यानी एक छोटी सी भी चीज अगर जाया करते हैं ना तकलीफ होती है। यानी जो निकालना है खाइए, आपको कहते खा ले खा ले। पहली बात देखिए कि ये सोचिए कि सब कुछ मेरे लिए नहीं है। ये जो वो इतनी डिफरेंट चीजें लाते हैं ना, वो चॉइस होती है, कोई ये खा ले कोई वो खा ले। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ चखना है, चखा नहीं जाता ज्यादातर। फिर दूसरी चीज देखिए कि बिल फर्स, आपने कुछ निकाल लिया प्लेट में नहीं खाया, या आपने किसी के लिए निकाल दिया, बच्चे के लिए निकाल दिया, आपने मियाँ के लिए निकाल दिया, अब आप जिम्मेदार हैं उसके। टेबल पे रखा होगा ना वो फेंक देंगे, आप जाके उनको बता दें जो मैनेजमेंट वाले हैं कि देखिए ये निकाला था बच्चे ने नहीं खाया, क्या मैं इसको लेके चली जाऊँ, मेरा हाल है। वो तो फेंक देंगे, अब आप जो चीज निकालें पत्ते खत्म करें, अदरवाइज आप उसको छोड़ दें। आप मतलब जाया ना करें, आपने जितना खाया उसका इंशाल्लाह गुना नहीं होगा, लेकिन जो जाया होता है वो बहुत। और ये तो हम यहाँ होटलों की बात करते हैं ना, आप देखिए कि यही चीज हमारी अपनी शादियों में होती है, हमारे घरों में होती है। इतनी आंखें नहीं भरती, थोड़ा निकाले कर ले और आप फील करके देखें। ये मैंने चीज बल्कि अमेरिकन कल्चर में सीखी कि जैसे इस तरह के जो बफेस होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डाला निकाला खाया थोड़े देर, आप घंटा बैठे दो बैठे आपको रोकते तो नहीं है। एक तो देखने में भी डिसेंट लगता है, थोड़ा थोड़ा आप निकालते हैं ना तो आप इंजॉय करते हैं। अब जब आपकी प्लेट में चार छह चीजें भर गई, अब क्या होगा, अपना ही दिल भर जाता है। तो बहरहाल इसके ऊपर देखें, लेकिन इसमें जो कोड वर्ड है वो क्या है, अगर बिलफर्स कोई चीज आपने अपनी प्लेट में निकाल दी है और खा नहीं सके तो आप उसको जाया ना करें, ले जाएं उनको बता दें, क्योंकि वो तो फेंक देंगे, लेकिन आपका अगर आता है और आप फिर उसको जाया ना करें उसको खाएं, इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि मियाना रवी आएगी। अपने बच्चों को इसकी आदत डालें। मुझे डर इस वक्त उन बच्चों का है जो खुले माहौल में पल रहे हैं, घर में पैसे की परवाह नहीं है, परवाह ही कोई नहीं, एक बिस्किट खाया दो फेंके, एक उधर गिरा उधर, फिर नया आया तो वो खोलिया, जूस खोला से पिया फिर फेंका दूसरा, क्या बनेगा इन बच्चों का। आप कहते कि हमारे सहाबे कराम मट्टी मिला पानी पीते थे, ऐसे जंगी सफर थे कि हीक देती हुई चर्बी थी उसको खाना पड़ा उनको। तुम्हारे बच्चों पे जरा सा मुश्किल वक्त आए तो ये क्या करेंगे, इसलिए इन चीजों का अपनी जिंदगी में लाना है। फिर अगली चीज जो हमारी लिस्ट में अब अगली ऐड हो रही है वो क्या, अदल करना गजब और इंसाफ में, ये क्या है। यानी आप देखिए जब हमें किसी पे गुस्सा आता है या हम जिससे खुश होते हैं, क्या किसी पे गुस्सा आए हमें तो हम उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर जाते, कहते हैं बस मैं गुस्से में कुछ नहीं कर, मुझे कुछ नहीं कहना। और जिससे राजी होते हैं ना तो क्या करते हैं हम उसको, बहुत खुश हैं जी तो फेवरिज्म फेवरेटिज्म, ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। मोमिन का मामला हक का मामला होता है। कुरान में आप देखिए सूरह माईदा में इस पर बहुत तफसील से बात होती है। ए दिलो, अदल करो, चाहे वो तुम्हारे अपनी जात के खिलाफ पड़े या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो या तुम्हारे बिरादरी के खिलाफ हो, तो किसी की फेवर नहीं लेनी। यानी इसका मतलब ये है, शायद आप इसको मुश्किल समझ रहे हो लेकिन इसके मुराद क्या है कि आपको किसी पर गुस्सा है या आप किसी से राजी हो, आपने हक का साथ देना। इसमें एक सहाबी का अमल भी याद आ रहा है, उनको अल्लाह के नबी ने यहूद की तरह भेजा कि जाओ उनसे जिजिया लेकर आओ। जब वो जिजिया लेने के, वो कुछ दरख्तों पे जो फल होता है ना उसको गिन के बताना होता है कि कितना फल है, उसी के मुताबिक उनसे पैसे लेने होते हैं, आज की जुबान में जैसे टैक्स की आप कोई बात कर ले। तो जब वो वहां गए ना तो उन्होंने उस सहाबी को रिश्वत देनी चाहिए कि जरा हम आपको कुछ दें तो जरा थोड़ा हिसाब लगाए ताकि हमें कम जिजिया देना पड़े। तो उन्होंने उस वक्त जो जुमला बोला था कि मैं जिस हस्ती की तरफ से भेजा गया हूं वो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है, और जिनकी तरफ मैं भेजा गया हूं यानी तुम लोग मबगूज हो, मुझे तुम पे गुस्सा है, लेकिन ना उनकी मोहब्बत और ना तुम्हारा गजब मुझे हक से रोक सकता है। मैं वही कहूंगा जो सच है। आज आप देखिए फेवरेटिज्म कहाँ नहीं होता। अच्छे मरासम है तो आप अपने बच्चों को आगे भेज लें, और ये तो आप सब जानते हैं कि आम बात बन चुकी है जी, कि आजकल तो सिफारिश के बगैर कुछ होता नहीं है, और दिस एंड दैट और इस तरह की बातें। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को जब साथ लेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आप दोहराएंगे ज़रा अभी तक आपकी लिस्ट में क्या क्या शामिल हुए, सब मिल के दोहरा दें। नंबर एक,
जबान की हिफाजत,
ये सब कहाँ गए जी, जुबान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत, फिर बिला वजह घर से नहीं निकलना, फिर अपने गुनाहों पर रोना, फिर अकेले में भी और दूसरों के बीच में भी अल्लाह का डर हमें रोके, फिर म्याना रवि रखनी है, और फिर अदल करना। यानी मिसाल है कि आप बच्चों को से राजी हैं तो उसको बिगाड़ना नहीं है, और बच्चे पे गुस्सा आए तो उसको मारना नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर आती जाएंगी तो इसके साथ हमारे ऊपर और बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी आ जाएंगी। तो कितनी है टोटल अभी तक? सात हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि सात आपके लिए भी काफ़ी हैं। अब इन सब चीज़ों को जब हम अपने ऊपर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ साथ सुलझेंगे। अब आप, मैं नहीं कहती ये सातों आज ही ले, मैंने तो आपको बताई है ना, लेकिन आप इसको 7 दिन हफ्ते का एक पैकेज बना लें, अपनी जिंदगी में इन चीज़ों को लाना, असल हमारा गोल ये है। आप इसके छोटे छोटे हैंडआउट्स बनाएं, बुक मार्क्स बनाएं, चेकलिस्ट बनाएं, अपनी नज़रों के सामने रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप ये बुक पूरी कर चुके होंगे तो आपकी लिस्ट शायद 100 के करीब पहुंच चुकी होगी। तो अगर आज हम सिर्फ इन 7 चीज़ों को बनाकर बेस अपने ऊपर लेकर उठें तो आप बताइए क्या हमारे लिए ये बैठना वर्थ इट है कि नहीं, हम कितने खूबसूरत हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ ऐसे ही कि जैसे लोग सजने संवरने के लिए पार्लर्स में जाते हैं, मेहनत करते हैं, कितना कुछ करते हैं, फिर सजते हैं ना, अगर ये 7 आदत मैंने और आपने अपने अंदर डाली तो हम कितना सज जाएंगे। और जब हम जहाँ से वापस जाएंगे तो लोग हमारे रवैयों में चेंज देखेंगे, और लोग जब देखेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर भी इसका असर आए। तो जिस तरह बुराई फैलती है ना, इस तरह नेकी भी फैलती है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना काफी है। इसमें से कोई सवाल या कोई कमेंट आपका हो तो जरूर जी।
तो 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, हम्बल, शाफी, तो मैं इमाम अबू हनीफा को फॉलो करती
हूं। जी जी,
मेरे लिए कहते हैं मैंने कहीं इमाम का पढ़ा ही नहीं तो मुझे दिखा दो कहाँ लिखा है। ये मुझे आपसे इसके बारे में पूछना था कि आप इसके बारे में बताएंगे 4 इमाम
जी। आप मुझे ये थोड़ा सा, मैं आपसे एक तो सवाल कर लूं, आप कहते हैं ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते हैं, आप उनके बारे में कितना जानती हैं?
मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हमारे बाप दादा जानते थे, तो मतलब वो कहते हैं अगर कोई मसला है, कोई मुझे पूछना है कि, तो तुम उसकी जाके बुक पे जाके उसको।
नहीं नहीं, मेरा सवाल समझिए, आपके हस्बैंड जो बात आपको कह रहे हैं ना, वो बात जो है वो दुरुस्त है ज्यादा इस लिहाज से।
जो भी मसला आता है वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो इमाम अबू हनीफा के उसमें नहीं देखूंगा कि ये मेरा मसला है
जी। ये इतनी लंबी बात,
रसूल को मानता हूँ मैं, सब चीजों को नहीं मानता, ये जो हरी पगड़ी वाले हैं और ये जो जो सारे हैं जो बदली और ये
जी। देखिए ये आपके साथ जो बात हुई ना, इसी तरह एक दफा एक सिस्टर ने मेरे से ये सवाल किया था, बहुत पहले, कराची की ये बात है। तो वो मेरे पास आई तो उन्होंने भी यही भी सेम यही बात थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर मेरे चंद सवालों के जवाब दे दें, तो कहने लगी कि जी बोलिए। मैंने कहा ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कौन थे? इमाम थे, इतना तुमको पता ही था। मैंने कहा उनका नाम क्या था? तो परेशान हो गई, कहने लगी इमाम अबू हनीफा। मैंने कहा नहीं, ये नाम नहीं है, ये तो कुनियत है हनीफा के बाद, उनको नाम नहीं पता था। मैंने कहा वो किस दौर में दुनिया में आए, कब आए, इनको नहीं पता था। मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताए कि उनकी कोई किताब है, कौन सी किताब है, इनको नहीं पता था। मैंने उनको कहा इनके दो शागिर्द जो बड़े मारूफ हैं वो कौन से हैं, उनको नहीं पता था। फिर मैंने उनसे कहा कि उन दो शागिर्दों की जो आज किताब में फिक्र हनफी में पढ़ाई जाती है वो कौन सी, नहीं पता। जब वो इनमें से एक सवाल का जवाब ना दे चुकी, मैंने अल्लाह के हुक्म से उनको सबका बता दिया बाद में, तो मैंने कहा कि आपको तो हक ही नहीं है अपने आप को हनफी कहने का, आप पहले आप उनके बारे में पढ़े। तो वो इतना उनका दिल खुल गया इस बात से। तो बात सिर्फ यही है, इस वक्त हम जाहिर है कि एक और चीज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा उस पर टाइम है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए बात बताऊं कि हम सब के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप इमेजिन कीजिए कि अल्लाह के, ये जैसे आप इसको मिसाल दें कि यहां हम खड़े हैं ना, ये नीचे हम, ये दौर नबी सल्लम का था। अगर आप इस लैंप को देखिएगा, नबी सल्लम थे ना, आपके बाद अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अली रजी अल्लाह अन्हु, चलिए यहां उंगली रख लें तो ये अबू बकर का दौर है, ये उमर का दौर। دور ہے، یہ عثمان کا دور ہے، یہ علی کا دور ہے. اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو حق ہوتا کہ اس کے نام پہ کوئی مسلک شروع ہوتا تو ابو بکری ہوتا، عمری ہوتا، عثمانی ہوتا، علی ہوتا، نہیں ہوا نا. پھر اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف سمجھ لیں ڈیوریشن آف ٹائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً یہاں پہلے امام، امام ابو حنیفہ، یہ سارے چاروں ایک دوسرے کے قریب، یہ دور میں یہ سارے امام تو بہت بعد آئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک امام کو رکھنا بہت ضروری ہے، تو سوال یہ ہے، کوسچن بس یہ لے کے جائیے، اس سے آگے نہ سوچیں نہ پوچھیں کہ جو لوگ ان اماموں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے دور میں سے دنیا میں چلے گئے تو پھر وہ کس مسلک پہ تھے. سب کی ڈوری اوپر محمد رسول اللہ سے، قال وقال، قال اللہ وقال رسول، سب اماموں نے اللہ کے نبی سے ہی بات لی تھی، لیکن آج امتیوں نے ان کے ساتھ مسئلہ کیا. میں فائزہ کو ایک چھوٹا سا کام دیتی ہوں اگر یہ بات میں آپ کی مدد کریں، ایک تو تلک الرسل کی جو تفسیر ہے سبیل الجنہ میں پہلی آیت ہے تیسرے پارے کی، اس پہ اس موضوع میں بات ہوئی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے قرآن میں جہاں آیتیں آتی ہیں کہ لوگ سب شروع میں ایک تھے، بعد میں اختلافات ہوئے علم آنے کے بعد کیونکہ بغی ہے، تو سبیل الجنہ کی تفسیر میں دو تین مقامات پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ ایک بات پورے سنیریو میں سمجھیں گے پھر ہی سمجھیں گے نا، راہ چلتے کوئی بات آپ کریں تو اس کی تو نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ کسی کو آئے گی. تو جو لوگ کرتے کہتے ہیں آپ ان کو کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کے اپنی شرح صدر کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ خالص چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں سے نکلتی ہے. سونا خالص ہوگا جہاں نکلتا ہے، دودھ خالص ہے بھینس کے پاس ہوگا، دین خالص وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد وہی لوگ نجات پائیں گے جو میں اور میرے صحابہ جس میں ہیں. تو ہمارے لیے اللہ کے نبی کے پاس صحابہ حجت ہے. سارے امام عام انسان تھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کراچی سے آئے نا تو آپ کے شہر میں 20 مسجدیں ہیں آپ کے ارد گرد، ایک مسجد کے ایک امام، دوسری کے دوسرے، تیسری کے تیسرے. فائزہ میرا خیال ہے کہ اٹلانٹا سے آئی ہیں تو ان کے شہر میں بھی 10-12 لوگ ہوں گے، یہ کہیں اور سے آئی ہیں، ساری دنیا میں اس وقت مختلف. تو ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا فائدہ دیا، ہمارا کام یہ کہ ان سے فائدہ لے لیکن ان کو حجت نہ بنا لے. بس یہ خرابی ہو گئی تھوڑی سی لوگوں میں کہ وہ کہیں آپ کے نہیں جی جو میرے گھر کے قریب کی مسجد کے امام ہے بس ان کو فالو کرو، تو یہ کہیں گی میں تم کو جانتی بھی نہیں، مجھے تم کا نام نہیں پتا، یہ سارا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے دین کے خادم تھے. یہ جیسے آپ پچھلے سالوں میں ادھر آئے تو امام شریم نماز پڑھاتے تھے، امام سدیس پڑھاتے تھے، اب آپ آتے ہیں تو ماہر ماقیلی ہیں، مدینہ میں آپ جائیں گے قاری حذیفی آپ کو ملیں گے. تو یہ تو انسان ہے، کرتے جا رہے ہیں، خدمت جاتے جا رہے ہیں. اسی طرح علماء کرام ہیں، عبداللہ بن باز گزر گئے، ناصر الدین البانی گزر گئے، عثیمین گزر گئے، اب نئے آ گئے. ہم سب بھی اسی طرح اللہ کا دین دے رہے ہیں. تو اب کوئی کہے کہ میری ذات سے جڑ جاؤ، میرے نام سے جڑ جاؤ، یہ مسئلہ نہیں ہے. جو چیز لینی ہے وہ اللہ اور اس کے دین کا کام ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو خود بخود اللہ تعالی آپ کو اس پہ لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، بس وہ نہ سمجھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر، اتنا اس آج کی بک کافی اتنی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جو کوسچن تھا اس کی الگ سے فائل بنا دیجیے تاکہ اس کو الگ سے سیو کر لیں.